हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय सात श्लोक नंबर 38, 39, 40 एंड 41। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल चरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वता विदूरकाष्ठा यमुः कुयोगिना नीरस्तकाम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रकुलिंद पुलकशा आवीर शुंभा यवनाख सादया यीनीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रसोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्विताजस् यसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणप्रा दुरभूत्किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदता भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभु निर्मायशेति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलंकृ कृष्टो भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखं भुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 7 शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में बताते हुए आज भगवान के बहुत ही मुख्य अवतार जो कि कलयुग के अंत में प्रकट होंगे उनके विषय में बता रहे हैं। इन अत्यंत ही सुंदर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
हरे कथा स्यु पाषंडीनो द्विज जन वृषला नृदेवा स्वाहा सदा वषडीति स्मगरो न यत्र शास्ता भविष्यति काले भगवान युगान्ते यर्ष्यालयेष्वपि सतां न हरे कथा स्यु पाषंडीनो द्विज जना वृषला नृदेवा स्वाहा सदा वषडीति स्मगरो न यत्र शास्ता भविष्यति कले भगवान युगान्ते। यही अर्थात जब ऐसा होता है आलयेषु यानी घर में सताम न हरे कथासु अपि मन भी सता मतलब सभ्य व्यक्ति न हरे कथासु न मतलब नहीं हरे कथा भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि की कथा स्यु होगी और पाषंडीनो द्विज जना वृषला नृदेव पाषंडीनो यानी नास्तक द्विज जना अपने को उच्च जाति यानी ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वाला घोषित करने वाला वृषजला वृषला मतलब निम्न वर्गीय शूद्र नृदेवा राज्य राज्य के मंत्री स्वाहा स्वदा स्वाहा मतलब यज्ञ स्तोत्र स्वदा मतलब यज्ञ की सामग्री वष्ट यानी यज्ञ वेद इति ये सब स्म यानी होंगे गिरा न यत्र शास्ता गिरा मतलब शब्द न यत्र कभी भी नहीं कहीं भी नहीं शास्ता मतलब दंड देने वाले भविष्यति प्रकट होगा कले यानी कलयुग का भगवान यानी श्री भगवान युग अंते यानी युग का जब अंत होगा कलयुग के इस कलयुग का भी जब अंत होगा और उसके लक्षण क्या होंगे जब कहीं पर भी भगवान की कथा नहीं होगी कहीं पर भी यज्ञ नहीं होगा यज्ञ की ध्वनि नहीं होगी जब हर जगह अपराध ही अपराध होगा तब क्या होगा। यहाँ अनुवाद देखिए तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथाकथित संतों तथा तीन उच्च वर्गों के सम्मानीय मनुष्य के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी और जब सरकार की शक्ति निम्न कुल में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न लोगों से में से चुने गए मंत्रियों के हाथों में चली जाएगी और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी यहाँ तक के शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे तो उस समय भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। यहाँ पर कलयुग के जो अंत है उसके लक्षण बताए जा रहे और उसका पहला लक्षण क्या है हरियालयेष्वपि सताम न हरे कथासु कहीं पर भी आपको भगवान की कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिलेगी भले ही संसार सताम यानी संत हो और ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य उच्च कुल वाले हो लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर भी कभी हरी कथा नहीं होगी वहाँ पर और जो सरकार के जो बड़ी शक्ति जो मंत्री हैं उन सब पे जो बैठेंगे वो बिल्कुल निम्न लोग होंगे जिनके अंदर ना कोई अक्कल होगी ना कोई बुद्धि होगी और ना ही वो संसार का या प्रजा का कुछ कल्याण चाहेंगे बस खाली अपनी जेबें भरने वाले होंगे बिल्कुल निम्न सोच वाले होंगे और उसके साथ साथ कहीं पर भी यज्ञ विधि का कोई नामो निशान न होगा यज्ञ का नाम भी किसी को नहीं पता होगा किसी को पता ही नहीं वेदों में क्या लिखा हुआ है। तो जब इस तरह से धर्म की हानि होगी तो उस समय भगवान कैसे बन के आएंगे, परम दंड दाता, यानी फिर क्योंकि कोई ऐसा तो बचेगा ही ना, भगवान का क्या प्राण है, परित्राण है साधु नाम विनाशा तो दुष्कृता, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। लेकिन उस समय साधुओं की रक्षा का सवाल नहीं होता क्योंकि किसी को पता ही नहीं धर्म क्या है, तो परम दंडदाता यानी विदाउट मर्सी जो है भगवान सबका संहार करने के लिए तलवार लेकर आएंगे। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की। यहाँ पर इस कलयुग के अंतिम चरण में भौतिक जगत की निष्कृष्ट अवस्थाओं के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, उन अवस्थाओं का सार समाहार ईश्वर विहीनता है। यहाँ तक कि तथाकथित संत व समाज के उच्च वर्ण जिन्हें सामान्य रूप से द्विजजन कहा जाता है नास्तिक हो जाएंगे, फलतः वह सब ईश्वर का पवित्र नाम तक भूल जाएंगे। उनके कार्यकलापों की बात तो दूर तक रही, मतलब उनको भगवान की लीलाएं शास्त्र ये तो दूर की बात है, उनको नाम तक नहीं रहेगा कि भगवान का नाम क्या है, याद भी नहीं रहेगा। समाज के उच्च वर्ण अर्थात समाज के भाग्य विदायक ज्ञानी पुरुष समाज में शांति तथा व्यवस्था के उत्तरदायी प्रशासक वर्ग तथा समाज की आर्थिक उन्नति के पददर्शक व्यवस्थाई वर्ग, इस सबों को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उन्हें उनके नाम गुण लीला पार्षद सामग्री व्यक्तित्व आदि के से परिचित होना चाहिए। समाज के उच्च वर्गों तक तथा संतों की पहचान उनके तत्व ज्ञान के अनुपात से होती है। उनके जन्म या पारिवारिक उपाधियों की वजह से नहीं होती है। यानी कि कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबल बंदा है, अगर कोई उच्च पद पर है जो कि शांति और व्यवस्था शांति की व्यवस्था करने वाला है, तो उसकी पहचान किससे होती है कि वो कितना शास्त्र को जानता है, कितना भगवान के नाम गुण लीलाओं पार्षदों सामग्री व्यक्तित्व आदि से कितना परिचित है, उसको शारीरिक उसके पास कितनी उपाधियां, उससे वो कितना प्योर है और कितना भक्ति में, उससे उसकी पहचान होती है। भगवान के विज्ञान की जानकारी तथा भक्ति के व्यवहारिक ज्ञान से बना ये उपाधियां व्यावहारिक ज्ञान के बिना ये उपाधियां शवों के अलंकारों के तुल्य समझी जाती हैं, और जब समाज में ऐसे अलंकारों की बाढ़ आ जाती है तो मनुष्य के प्रगतिशील शांत जीवन में अनेक विषमताएं उत्पन्न होती हैं। समाज के उच्च वर्गों में प्रशिक्षण या संस्कृति का अभाव होने से वे अब द्विजजन कहलाने के अधिकारी नहीं रहते। द्विज की महत्ता की व्याख्या इस महान ग्रंथ में अनेक स्थलों पर दी गई है, और यहाँ पुनः बता देना अभीष्ट है कि माता पिता के संभोग से होने वाला जन पशु जन कहलाता है, किंतु ऐसा पशु जन तथा आहार निद्रा भय मैथुन पर आधारित पशु जीवन आध्यात्मिक जीवन की किसी वैज्ञानिक संस्कृति के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तित्व का असंस्कृत जीवन है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति जो है वो संस्कृत ईश्वर विहीन श्रमजीवी वर्ग के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि अगर मनुष्य के पास बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो वो कैसी है, जैसे शव को बहुत सारे गहनों से श्रृंगार कर दिया हो। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राणस्य इह देवस्य मंडनो लोकरंजनम। जिस तरह से अगर कोई शव हो उसको हम बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, उसको बहुत अच्छी ड्रेस पहनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहनाते हैं, और लेकिन उसके अंदर प्राण ही नहीं तो क्या लाभ है उसका, उसी तरह से यदि भगवान की भक्ति नहीं हृदय में, भगवान से प्रेम नहीं है, तो फिर जाति शास्त्र चाहे कितने ही अच्छी जाति और कुल में उत्पन्न हुआ हो, भले कितने ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया हो, कितना ही जप किया हो, तप किया हो, लेकिन यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो भी ऐसे ही है जैसे मृतक शव को श्रृंगार कराना। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी फिर भी बता रहे हैं द्विज के विषय में। द्विज किसको बोलते हैं? जिसका दोबारा जन्म हो। वास्तव में जन्म जा शूद्र जायते, हम सब शूद्र की तरह जन्म लेते हैं। और जो बच्चा जन्म लेता है तब उसको कोई ज्ञान नहीं होता है कि मैं किस लिए जन्म लेता हूँ। पिछले जन्मों की सारी बातें भी भूल जाता है कि कितनी दफा मैं जन्म मरम के चक्कर को काटने के बाद इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ। लेकिन फिर जब वो ब्राह्मण किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आता है, दीक्षा लेता है, तभी वो शास्त्रों को पढ़ता है और फिर उसको समझने का प्रयास करता है। वेद पाठा इति विप्र, जब वो वेद को पाठ करता है तो वो विप्र बनता है। और उसके बाद जब वो उन वेदों से पार यानी भगवान की सत्ता को समझने लगता है, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्म, तो फिर वो ब्राह्मण बनता है। तो द्विज जो होते हैं, जिनको गुरु महाराज का आश्रय मिलता है, जिनसे वो दीक्षा लेते हैं, तो वो द्विज कहलाते हैं। तो यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्थात निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का संस्कृत जीवन है, संस्कृत के बिना शूद्र जीवन अर्थात निम्न श्रेणी व्यक्तियों का असंस्कृत जीवन है। अगर उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है तो उनका जीवन असंस्कृत है। यहाँ पर उल्लेख है कि कलयुग में समाज की प्रशासन शक्ति असंस्कृत, ईश्वर विहीन, श्रम विहीन, श्रम जीवी वर्ग के हाथों में चली जाएगी। प्रशासक शक्ति यानी जो गवर्नमेंट है वो सब ऐसे ही असंस्कृत, किसी को शास्त्रों का पता नहीं होगा, किसी को भगवान का पता नहीं होगा, बस केवल शोषण करने के लिए शासन प्राप्त करेंगे। और नृदेव अथवा सरकारी मंत्रीगण वृषल अर्थात समाज के निम्न असंस्कृत लोग होंगे। यदि मानव समाज ऐसे असंस्कृत निम्न श्रेणी के लोगों से भरा रहे तो सुख तथा शांति की आशा व्यर्थ है। जो मुख्य लोग हैं जैसे मंत्रीगण हैं, वो भी इस तरह के होंगे तो आगे प्रजा को किस तरह से आनंद। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, साफ बात यह कि यदि हमारा समाज इस तरह से असंस्कृत रहेगा, जो ना शास्त्रों को मानेगा, ना भगवान की मानेगा, ना भगवान को मानेगा, तो फिर उस समाज में सुख की आशा करना व्यर्थ है। मनुष्यों में ऐसे असंस्कृत समाज पशुओं के लक्षण पहले से विद्यमान हैं और जननायकों का यह कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दे और तत्व ज्ञान में प्रशिक्षित द्विज लोगों को प्रतिष्ठित करके सामाजिक व्यवस्था में सुधार लेने का प्रयास करें। सारे विश्व में श्रीमद् भागवतम की संस्कृति के प्रसार से ही यह संभव है। मानव समाज की अधोगति होने पर भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और निर्दय बनकर समस्त आसुरी लोगों का बंधन वध करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। हम सबको इसके लिए क्या कार्य करना है कि जब तक हम जहाँ तक आवाज जाती है हम इस भागवत धर्म को फैलाएं। यह हम सबका कर्तव्य है। ये भगवान ने एक ही चीज इसी बताई कि वो मुझे सबसे प्यारा है और भविष्य में भी उससे प्यारा ना कभी होगा और ना ही कोई पहले इससे पहले कोई इतिहास में कोई ऐसा मुझसे प्यारा हो चुका है। किससे प्यारा? जो भगवान के इन शब्दों को दूसरों को बताता है। भगवान कहते हैं, नच तस्मात मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्तमा भविचा न तमे तस्मात अन्य प्रियतरो बोली, कि जो मेरे इन शब्दों को दूसरों को पहुंचाता है। तो हम सबका फर्ज है कि हम सब भगवान के प्रिय बने और श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जहाँ तक हमारी आवाज आती है उसको आगे तक फैलाएं, ताकि भगवान के इस दिव्य नाम, इस दिव्य लीलाओं का प्रचार हो और ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान से जुड़े और इसी से सबका कल्याण होगा। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सर्गे तपो अहम सर्गे तपो हम ऋषयो नवये प्रजेशा स्थाने धर्मम कमन्वर मरावनीशा अन्ते त्वधर्म हरमन्युवशा सुरात्या माया विभु तय इमा पुरुषक्ति भाज सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशा स्थाने धर्मम कमन्वमरान् मरावनीशा अन्ते त्वधर्म हरम युवशा सुराध्या माया विभूतय इमा पुरुषक्ति भाजा। सर्गे यानी जब सृष्टि का आरंभ होता है, तपो यानी तपस्या, अहम यानी मैं, ऋषय यानी ऋषि, नव ये प्रजेशा, नव मतलब नौ, ये प्रजेशा जो उत्पत्ति करते हैं। सर्गे का मतलब होता है जिस समय सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे कि जिस समय सृष्टि का प्रारंभ होता है उस समय क्या क्या होता है, उस समय तपो यानी तपस्या होती है ना? तपस्या सर्ग के समय तपस्या जो है वो मुख्य है, और उसके समय और कौन होता है, अहम यानी ब्रह्मा जी बोलते मैं होता हूँ, और ऋषय नवय प्रजेशा नो प्रजापति होते हैं जो कि संसार को सृजन करने में ब्रह्मा जी की सहायता करते हैं। और उसके बाद क्या, स्थाने धर्म मखमन्वर मन्व मरावनीशा, स्थाने अर्थात सृष्टि का पालन करते समय मध्य में, अर्थ निश्चय ही धर्म यानी धर्म, मख मतलब भगवान विष्णु, मनु यानी मनुष्यों के पिता, अमर अर्थात देवता जिन पर पालन का भार है, यानी जब सेंटर आता है सर्ग के बाद, चलिए सृष्टि जी सृष्टि थी रहा है, सृष्टि हो जाती है उसके बाद उसको पालन करने के लिए क्या होता है, स्थाने धर्म मखमन्वर मर स्थाने यानी उसके बाद क्या होता है, अथ निश्चय ही धर्म यानी धर्म, मख मन भगवान विष्णु, मनु मन मनुष्यों के पिता, और अमर यानी देवता जिन पर पालन का भार होता है, ये सब होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब संसार का अंत होता है, अंते तो धर्म हरमन्यु वशा सुराध्या, अंते यानी अंत में तुमना लेकिन अधर्म, हर जगह पर अधर्म ही अधर्म, और उसमें अधर्म को नाश करने के लिए हारा हारा मना शिव जी, मन्युवश मतलब क्रोध के वशीभूत शिव जी भी क्रोध से भरकर, असुर आध्या नास्तिक भक्तों के शत्रु, माया मतलब शक्ति, और विभूत है यानी शक्तिशाली प्रतिनिधि, इमा ये सब पुरुषक्त भाजा परम शक्तिशाली भगवान के द्वारा नाश होते हैं। अनुवाद देखिए, सृष्टि के आरंभ में तपस्या में यानी ब्रह्मा तथा जन्म लेने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं, फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान विष्णु नायक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव जी तथा क्रोध नास्तिक इत्यादि, ये सब के सब परम शक्ति रूप भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा की तपस्या से होता है, इसके बाद नौ प्रजापति आते हैं जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है तो भगवान विष्णु की भक्ति या यथार्थ धर्म, विभिन्न देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा प्रकट होते हैं जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने को होता है तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है, फिर क्रोध नास्तिकों के साथ साथ शिवजी रहते हैं, क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिवजी रहते हैं, किंतु ये सब परमेश्वर के विभिन्न प्राकृत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शिव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार हैं। विष्णु सत्वगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिवजी तमोगुण के स्वामी हैं। इस प्रकार यह भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और इसका उद्देश्य उन बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान करने का है जो इस भौतिक जगत में आ फंसे हैं। और इसमें जो मनुष्य भगवान विष्णु के संसर्ग संरक्षण में सत्वगुण प्राप्त करता है उसे वैष्णव नियमों का पालन करने का के कारण मुक्त होने का और भगवत नाम में उन्नति प्राप्त करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है, जहां से यह दुखमयी जगत में फिर कभी नहीं लौटना पड़ता। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सृष्टि मध्य और अंत को अलग अलग जीवों में, अलग अलग व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शुरू में ब्रह्मा जी होते हैं, धर्म होता है, तपस्या होती है और इस तरह से सृजन होता है, और उसके बाद विष्णु भगवान पालन करते हैं, उनके साथ साथ देवता गण भी हैं जो अलग अलग जीवों को अलग अलग वस्तुएं प्रदान करते हैं और उनको इस संसार में किस तरह से रहा जाए उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है वो अपने पुराने कर्मों के अनुसार कुछ न कुछ कार्य तो करते रहते हैं। ऐसे करते 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 जब सृष्टि का अंत होने वाला होता है तब सब लोग नास्तिक होते जाते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक तो ये नास्तिकता भरी हुई है ना। भगवान ने संसार की रचना क्यों की है कि जो जीव यहाँ पर भटक रहे हैं बारम्बार जन्म मरण के चक्कर में, उनको एक अवसर मिल सके कि वो भगवान के धाम जा सके। लेकिन जब वो इस अवसर का दुरुपयोग करने लगते हैं और सब नास्तिक हो जाते हैं, भगवान की भक्ति खत्म हो जाती है, यज्ञ खत्म हो जाते हैं, तपस्या खत्म हो जाती है, फिर भगवान वापस आते हैं ताकि ये और भी अगर जिएंगे तो क्या होगा, तो और भी ज्यादा अपराध करेंगे, और भी ज्यादा इनको कष्ट मिलेगा, इसलिए सब अधर्मियों का विनाश कर देते हैं। ये सब भगवान की करुणा ही है, कृपा ही है, और ये सब सृष्टि पालन और संहार ये सब भगवान की करुणा के कारण जीव को बार बार अवसर प्रदान किया जाता है कि वो अपने मनुष्य जीवन को सफल करे और भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करे। मुक्ति होने का, भगवत्ता में उन्नति प्राप्त करने का सिर्फ यही तरीका है कि हम मनुष्य जीवन को व्यर्थ कुत्ते बिल्लियों की तरह जीने में ना गुजारें, बल्कि भगवत धाम जाएं जहां से दोबारा इस भौतिक दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णुर्न वीर्य गणनं कतमोर्हतिः यः पार्थिवान्यपि कवि विमिमे रजांसि चस्कम्भय स्वहरसाक्षलता त्रिपृष्ठम् यस्मात्त्रिसंय समदन सदन दुरुकम्पयानाम् विष्णुर्न वीर्य गणन कतमोर्हतिः यः पार्थिवान्यपि कवि विमिमे रजांसि चस्कम्भय स्वहरसास्कल तात्रिपृष्ठम् यस्मात्त्रिसंय सदन दुरुकम्पयानाम् विष्णुर्न वीर्य गणना, विष्णु या ना भगवान विष्णु का ना नो मना, लेकिन वीर्य गणना, वीर्य मना उनके पराक्रम की गणना, मतलब गिनती, कतम ऐसा कौन है अरहति इसे करने में सक्षम है, कोई ऐसा है जो भगवान के पराक्रम की, भगवान की वीर्यता की गणना कर सके, यह यमना इस जगत में, यह पार्थी वान्यपि कवीर, यह पार्थिवान मतलब जो पार्थिवान मतलब परमाणु, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, अपि भी कवि यानी महान विज्ञानी, बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, वेमा में अर्थात गिना गया होगा, भले वो छोटे छोटे आइटम्स को भी गिनने, लेकिन रजसी, रजसी का मतलब होता है कणों को चस्क, चस्कंब यानी पकड़, स्वरहसा मतलब अपने पैर से, अस्खलता बिना रुके, त्रिपेष्ठम यानी उच्चतम अंतरिक्ष, यस्मात जिससे, त्रिसाम्य तीनों गुणों का संतुलन, सदनात उस स्थान तक, उरुकंपयानम यानी अत्यधिक विचलित होता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने जब भगवान के सारे अवतारों के विषय में बता दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भला ऐसा कौन है जो विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणु के कणों की गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में जब अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्यलोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्यवस्थता तक बढ़ाया था, तो सारा ब्रह्मांड हिलने लग गया था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिक विज्ञानियों की सर्वोच्च वैज्ञानिक प्रगति परमाणु शक्ति है, किंतु किसी भी भौतिक विज्ञानी को संपूर्ण ब्रह्मांड के कणों में निहित परमाणु का कोई अनुमान नहीं है। फिर भी यदि कोई इन सूक्ष्म कणों को गिन भी ले, अथवा आकाश को बिस्तर की भांति लपेट भी सके, तब भी वह परमेश्वर के सामर्थ्य तथा शक्ति का अनुमान लगाने में असमर्थ होगा। वे त्रिविक्रम कहलाते हैं, क्योंकि एक बार अपने वामन अवतार में उन्होंने अपने पद चाप को सर्वोच्च सत्यलोक से भी आगे फैला दिया था, और वे तीनों गुणों की साम्यवस्थता तक पहुंच गए थे, जिसे भौतिक जगत का आवरण कहा जाता। भौतिक आकाश के ऊपर भौतिक आवरण के सात स्तर कोश हैं, और भगवान ने इन सातों को भेद दिया था, उन्होंने अपने अंगूठे से छेद बना दिया था, जिससे होकर कारण सागर का जल भौतिक आकाश में छन कर पहुंच रहा था, और यह धारा पवित्र गंगा नदी कहलाती है, जो तीनों लोकों को पवित्र बनाती है। दूसरे शब्दों में विष्णु के समान दिव्य शक्ति वाला अन्य कोई नहीं है, वे सर्वशक्तिमान हैं, और ना तो उन्हें कोई उनके समान है, ना उनसे कोई बढ़कर है। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे कि हम समझते हैं, या जो बड़े यहाँ के साइंटिस्ट हैं वो समझते हैं कि हमको कितना ज्ञान है, ये जान लिया, वो जान लिया, परमाणु को जान लिया, लेकिन इस संसार को या इस पृथ्वी को केवल जानने से कुछ भी नहीं होगा। इस पृथ्वी के बाद भी कितने सारे लोक हैं, कितने सारे ग्रह हैं, और उन सब ग्रहों के पार जो आध्यात्मिक जगत है, वहां तक तो किसी की फसा ही नहीं है, कुछ नहीं जान सकते। तो भगवान और भगवान की जो भगवत्ता है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसे केवल भगवान ही जान सकते हैं। जिस तरह से त्रिविक्रम कहा जाता है ना, भगवान ने अपने तीन पगों में, ये भौतिक जगत, ऊपर के सारे लोक नीचे के सारे लोक सब कुछ नाप लिए और ऊपर के लोकों को पार करके आध्यात्मिक जगत तक भगवान का चरण जहाँ कारण दक्षाय विष्णु विरजा नदी में है वो जल तक भगवान के उस अंगूठे के द्वारा जो छेद हो गया था सातों आसमानों को चीर कर भगवान के चरण ने वहां पर छेद कर दिया और वहां से कारण दक्षाई समुद्र कारण का समुद्र जो था वो उसका जल इस भौतिक जगत में प्रकट हुआ जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में संभाल के रखा क्योंकि उस जल पर भगवान का स्पर्श हुआ था इसलिए वो इतना पवित्र है कि करोड़ों सालों से वो जल जो है उस भौतिक जगत के सारे पापों के पापों को धो रहा है और उसे पवित्र कर रहा है। तो भगवान के चरणों के स्पर्श करने से जो गंगा जल इतना पवित्र हो गया है तो हम सोच सकते हैं कि भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्द कितने पवित्र होंगे भगवान की हुई लीलाएं कितनी पवित्र होंगी। हमें बस उन लीलाओं को श्रवण करके उन शब्दों को भगवान के श्रवण करके और भगवान के पवित्र नाम को उच्चारण करके अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करना भगवान को समझने का प्रयास संभव नहीं है क्योंकि जो बड़े बड़े सूर हैं मोहयंत यत सूर यहाँ बड़े बड़े जो देवी देवता हैं वो भी भगवान को समझने में नाकाम रहते हैं और मोहित हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो भगवान के विषय में श्रवण करे और भगवान को प्रेम करे और भगवान के पवित्र नाम का जप करे इसी से उसका कल्याण होगा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं नान्तं वेदाम्यहमामि मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुण दशशतानन आदिदेव शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम् नान्तं वेदाम्यहमामि मुनयोग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणं दशशतानन आदिदेव शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम् नान्तं वेदाम्यहमामि नान्त मतलब न अंत यानी अंत या पार वेदामी यानी जानता हूँ अहम यानी मैं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं उस भगवान का अंत नहीं जानता हूँ। अमी यानी तब ये सब जो बाकी हैं मुनयो यानी मुनिगण अग्रजा तुम से पूर्व उत्पन्न हुए हैं ते तुम माया बलस्य यानी सर्वशक्तिवान का पुरुषस्य यानी भगवान का कुतः अन्यों की क्या बात करें आवरा जो हमारे बाद उत्पन्न होंगे ये माना जो भगवान ब्रह्मा जी भगवान के विषय में बता रहे हैं कि देखो भगवान का पार प्राप्त करना संभव नहीं है मैं नहीं जानता। नारद जी को बोलते हैं तुम्हें नहीं पता तुमसे पहले उत्पन्न हुए जितने मुनिगण हैं जो बहुत शक्तिवान हैं उनको भी भगवान के विषय में भली भांति पता नहीं है तो फिर उनके बारे में क्या कहा जाए मतलब हमारे बारे में या फिर आज के जो साइंटिस्ट हैं जो विज्ञानी हैं जो कि बाद में पैदा हुए वो भला भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो गायन गुणान दशशतान आदि देव इसे कहते हैं गायन गुणान गीत के द्वारा गुणान यानी गुण दशशतान यानी एक सहस्त्र मुखों वाला जो हजारों मुखों वाले शेषनाग हैं जो कि कंटिन्यूस भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं आदि देव भगवान का प्रथम अवतार है शेष वो शेष नामक अधुनापि आज तक अपि भी अधुनापि समवस्यति नास्य पारम समवस्यति वो पार नहीं सकता वो नहीं पा सका न यानी कभी नहीं अस्य उनका पारम वो कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम का गुणगान करता रहता वो भी एक नहीं हजारों मुखों से गायन गुणान दशशतानन यानी कि हजारों मुखों से भगवान का गुणगान कर रहा है लेकिन फिर भी वो भगवान का पार नहीं पा सका मैं नहीं पा सका, तुम नहीं पा सके, तुमसे पहले जो कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो नहीं प्राप्त कर सके, तो फिर आज के हमारे बाद जो आएंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं जो हमारे बाद जो आएंगे वो भला भगवान को क्या जान सकेंगे। अनुवाद देखिए, न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान भगवान को भलीभांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। यहाँ तक कि भगवान के प्रथम अवतार शेष भी जो अपने एक सहस्त्र मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सकते। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वशक्तिमान भगवान की तीन मूल शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था, और इन तीनों शक्तियों के अनंत विस्तार है, अतः शक्तियों के विस्तार की गणना कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शेष अवतार के रूप में इन शक्तियों का अनुमान नहीं लगा पाते, यद्यपि वे अपने सहस्त्र मुखों से उनका वर्णन करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। आगे ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, वे कहते हैं ये शाम स एष भगवान दयेदनंत सर्वात्मना श्रुति पदो यदि निर्व्यलैकम् ते दुस्तरामति तरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति श्वशिगालभक्षे येषां स एष भगवान् दययेदनन्त सर्वात्मनाशति पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरा तरन्ति च देवमायाम् नैष्यं मम अमिति श्वशिगालभक्षे येषां स एष भगवान्। येषां मतलब केवल उन्हीं पर, स भगवान्, एष यह भगवान यानी श्री भगवान, दया ये दया रखते हैं, जिस पर भगवान दया दिखाते हैं, अनंत अनंत मतलब अनंत शक्तियां, सर्वात्मना श्रुति पदो, सर्वात्मना सभी प्रकार से बिना हिचक के, आश्रिति पदा शरणागत जीव, जो भगवान का सभी प्रकार से बगैर हिचक के शरणागत हो जाता है, और भगवान की जब उसके ऊपर असीम दया होती है, यदि निर्व्यलीकम यदि मन यदि इस प्रकार शरण में आता है, निर्व्यलीकम यानी बिना बनावट के, उसके अंदर कोई बनावट नहीं होती, प्योरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ जब वो भगवान की शरण में आता है, तो ते दुस्तरामति, ते मन केवल वो दुस्तराम, दुस्तराम का मतलब होता है दुर्लंग है, बहुत कठिन है, अतितरन्ति पार नहीं कर सकते उसको, साधारण आसानी से पार नहीं कर सकते, च देव्य माया, और वो क्या है, देव्य माया मतलब भगवान की चतुर्दुख शक्तियां, जो भगवान की माया है उसको बहुत पार करना कठिन है, लेकिन जो सिंसियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, बगैर बनावट के भगवान की शरण में आता है, बगैर हिचक के शरणागत हो जाता है, एशाम, एशा मतलब उनका, मम यानी मेरा, एशाम ममा हमिति धी, धी का मतलब होता है धी चेतना, जब उनकी चेतना मुझ में लगती है तभी वो जो है मुझे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनकी चेतना जानवरों के जैसी होती है, श्व का मतलब होता है कुत्ते, श्रीगाल मतलब सयार, बक्षे भोजन के मामले में, जो केवल अपने शरीर को सब कुछ समझते हैं, वो शरीर जो अंत में सयार और कुत्तों का भोजन बनना है, शरीर की वास्तव में गति यही है, आखिर में उसको या तो कीड़ों का या तो कुत्तों का या सैयारों का भोजन बनना, या तो अग्नि के मुख में डालना है ना, तो ऐसे शरीर के ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उसी की आसक्ति के लिए जो जीते हैं, वो भला भगवान को क्या समझेंगे। भगवान को तो वही समझ सकते हैं जो तन मन और धन से भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। उन्हीं के ऊपर भगवान दया करते हैं, तब ते ही जाने जेनु देहु जनाए। भगवान को वही जान सकता है जिनको भगवान जनाते हैं, जिनके ऊपर भगवान कृपा करते। भगवान कहते हैं जो कंटिन्यू तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनमाम उपयन्ति ते। मुझे जानने के लिए आपको योग्यता की आवश्यकता नहीं है, प्रेम के साथ मेरा भजन करने की आवश्यकता है, शरणागत होने की आवश्यकता है। अनुवाद देखिए, किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लंघ्य सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के अनंत भक्त भगवान की महिमा से परिचित होते हैं और वे इतना तो समझते हैं कि ईश्वर कितने महान हैं और उनकी विविध शक्तियों का कितना विस्तार है। जो इस नश्वर शरीर के प्रति आसक्त रहते हैं, वे भगवत विज्ञान के क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं हो पाते। यह हमारा भौतिकतावादी संसार स्वयं के विषय में देहात्म बुद्धि की अवधारणा के कारण भगवत विज्ञान से अपरिचित है। भौतिकतावादी व्यक्ति न केवल अपने भौतिक शरीर वर्ण अपने बच्चों, अपने संबंधियों, जाति वालों, देशवासियों इत्यादि के भौतिक शरीरों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही राजनैतिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परमार्थ के कोई प्रकार के कार्य करते हों, किंतु इनका यह सारा कार्य आत्मा के विषय में देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से ऊपर नहीं उठ पाता। अतः जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो पाता है, तब तक उसे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती और इस भगवान के ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की सारी चमक दमक व्यर्थ है। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये गलत नहीं है कि हम संसार में सबके साथ सही व्यवहार करें, एजुकेशन प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही संसार या अपने शरीर का यही उद्देश्य माने कि यही हमारे लिए अपने जीवन का उद्देश्य है। उद्देश्य जब तक क्लियर नहीं होगा ना कि मैं आत्मा हूँ और मुझे भगवान को पहुंचना है, फिर हम चाहे कितना ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, कितना ही हमारी बुद्धि कितनी विकसित हो जाती है, आखिर तो क्या होगा? आखिर तो ये सब यहीं पर रह जाएगा ना। जो कुछ भी हमारे पास है वो सब हमारे साथ चलने वाला नहीं है। भले कुछ समय के लिए ये सब चीजें हमें इम्पोर्टेंट लगती है के धन कमाना या फिर ना एजुकेशन प्राप्त करना, लेकिन आखिर तो ये सब यहीं रह जाना है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसका जो मेन काम है वो क्या है? भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ा है या नहीं जोड़ा। इस संसार में हम देखें सब कोई परेशान रहते हैं, है ना? जितने भी लोग हैं परेशान रहते हैं। क्यों? क्यों सिर्फ और सिर्फ अपने देह के लिए, अपने इस संसार में किस तरह से मेरा नाम हो, कैसे मैं सुंदर रहूं, कैसे मैं धन कमाऊं, कैसे मैं लग्जरियस लाइफ हो, इसी के लिए तो परेशान है ना। लेकिन उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें तो भगवान के नाम को जप करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी उपलब्धि है, जो कुछ भी हम अपने प्रयासों से इस संसार में प्राप्त करते हैं, वो सब वक्त के साथ समाप्त हो जाएगी। जैसे 40 साल की अवस्था में उच्च शिक्षित और अल्प शिक्षित एक जैसे हो जाते हैं, फिर बल्कि अल्प शिक्षित अधिक कमाता है ना, 40 साल की एज हो जाती है, फिर जो होता है वो अधिक कमा नहीं सकता जो बहुत ज्यादा शिक्षा जिसके पास होती है, और जो 50 साल की अवस्था होती है तो रूप और कुरूप एक जैसे होते हैं, यानी 50 साल में आप आ जाओगे ना तो आप कितनी ही सुंदर, कितना ही आपने बहुत सारे होम रेमेडीज यूज किए हो, कितना सारा समय आपने अपने चेहरे पर लगाया हो, लेकिन चाहे आप कितने ही सुंदर हो कुरूप हो एक जैसे लगेंगे, क्योंकि आप सुंदर जो झुर्रियां होंगी, आंखों के नीचे गड्ढे होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे, वो सब तो दिखेंगे ना। 50 साल का व्यक्ति कितना अपने आप को सुंदर बना सकता है, और उसके पास 60 साल की अवस्था में उच्च पद और निम्न पद एक जैसे होते हैं, यानी चपरासी भी अधिकारी की सेवा निवृत्ति होने के बाद उनकी तरफ देखने से कतराता है, है ना। चपरासी भी उसकी इज्जत नहीं करता, भले आप कितना ही अधिकारी हो, लेकिन ऐसी तो वही उच्च पद और निम्न पद सेम हो जाते हैं। और 70 साल की अवस्था में बड़ा घर और छोटा घर एक जैसे होते हैं, क्योंकि घुटनों के दर्द और हड्डियों का गलना आपको बैठे रहने पर मजबूर कर देता है। आप छोटी जगह में भी गुजारा कर सकते हैं, उधर उधर जाने की जरूरत नहीं। पहले हम सोचते ना बड़ा घर हो, लेकिन आगे जाके क्या फायदा है। 80 साल की अवस्था में आपके पास धन का होना या ना होना एक जैसा होता है। 80 साल के बाद ये सब चीजें, अगर आप खर्च करना भी चाहें तो आपको पता ही नहीं कि धन को किस तरह, बल्कि जिसके पास धन होगा ना, अगर वो ज्यादा उम्र हो जाएगी ना उसकी, तो हर कोई उसके मरने की दुआ करेगा, जल्दी मरे तो धन हमें प्राप्त हो। और 90 साल की अवस्था में सोना और जागना एक जैसा है, जागने के बावजूद भी आपको नहीं पता कि अभी करना क्या है, सोए रहो, कुछ जाग, कोई काम एक्टिविटीज है नहीं। जो जीवन को सामान्य रूप में लें, क्योंकि जीवन में रहस्य नहीं है जिन्हें आप सुलझाते हो। जीवन में सिर्फ एक, ये जो मनुष्य जीवन है, जिन जिन चीजों में हम अपने मनुष्य जीवन को समाप्त कर रहे हैं, वो सब समय के साथ आद्यंतवंत कौनते नतेषु रमते बुधा, उसका समाप्त हो जाने वाला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों की फिक्र नहीं करता कि मुझे ज्यादा सुंदरता प्राप्त हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और लग्जरियस लाइफ हो, क्योंकि समय के साथ साथ ये सब की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो हर समय हमें जिसकी जरूरत पड़ती है, ना केवल इस जीवन में बल्कि आगे आध्यात्मिक तक जीवन तक ले जाने के लिए भी वही हमारे साथ चलने वाला है, वो है भगवान का नाम। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने जीवन, भगवान कहते तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच, अपने कर्मों को करते रहो और कंटिन्यूअस मेरा स्मरण करो, मेरे पवित्र नाम का जप करो। तो बुद्धिमान वही है जो सदैव जिस भी सिचुएशन में, दुख हो सुख हो जो कुछ भी हो, उसमें भगवान का नाम लेता है और भगवान के नाम को ही अपने जीवन का सर्वस्व धन मानता है, क्योंकि यही नाम धन ही हमें भगवान तक पहुंचाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैसा आप रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं भगवान के पवित्र नाम को जप कर भगवान को प्रसन्न कर सकूं और अपनी सेवा से गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकूं। हरे कृष्ण।